ஓம் சாந்தி. ஹம் சபி பாபா கே பச்சே, பாபா கே சாத் நயா வர்ஷ் மனானே கே லியே ஆயே ஹே. கல் ஹம் சப் புரானே வர்ஷ் கோ விதாயி தேங்கே, நயே வர்ஷ் கே ஆகமன் கி தயாரி கரேங்கே. நயா வர்ஷ் ஹம் சப் கே லியே பஹுத் சி நயி நயி பிரேரணாயே லேகர் ஆதா ஹே. ஹர் ஏக் கா பிராமணோ மே பிரம்மாவத்சவ் மே நயா உமங், நயா உத்சாஹ், நயி பிரேரணாயே நயே வர்ஷ் மே ஹோதி ஹே. பஹுத் சமய சே ஹம் பாபா கி இன் பிரேரணாவோ கோ சுன்தே ஆ ரஹே ஹே கி பச்சே இஸ் சமய பஹுத் சமீப் ஹே, ஔர் வோ சமய சமீபதா கே சின்ஹ ஹம் சப்கே சன்முக திகாயி தேனே லகே ஹே. இசிலியே ஆஜ் இஸ் விஷய கோ சுனா ஹே கி சமய கி சமீபதா பாபா கிஸ் பாத் கோ கஹதே ஹே, வோ கௌன்சா சமய சமீப் ஆ கயா ஹே ஜிஸ்கி ஹம் சப்கோ தயாரி கர்னி ஹே. ஏக் தரப் ஹம் சப் தேக் ரஹே ஹே பாபா கி ப்ரஹத் சேவாயே தேஷ் ஔர் விதேஷ் மே பஹுத் விஸ்தார் கோ பா ரஹீ ஹே. சாரோ ஓர் கித்னே சேவா கேந்திர, உப்சேவா கேந்திர, கீதா பாடசாலாயே, ஸ்தான் ஸ்தான் பர் பாபா கே பச்சே பஹுஞ்ச் ரஹே ஹே. சேவாவோ கா டங்கா தோ பாரத் நஹி பூரே விஸ்வ மே பஹுத் தீவிர கதி சே பஜ் கயா ஹே, பஜ் ரஹா ஹே. ஔர் சாயன்ஸ் கே சாதனோ கே த்வாரா சந்தேஷ் தேனே கி கதி பஹுத் ஃபாஸ்ட் ஹே. இஸ்ஸே லக்தா ஹே கி பாபா ஜோ ஹம் சப்சே சாஹதே ஹே கி மேரா சந்தேஷ் கர் கர் தக் பஹுஞ்ச் ஜாயே, தோ மை சமஜ்தா ஹூன் யே சாயன்ஸ் கே சாதன் உஸ்கா நிமித் மாத்யம் பனேங்கே. லேகின் சேவா கா சாதன் பலே அநேக் பிரகார் கே சாயன்ஸ் கே சாதனோ சே ஹே, ஃபிர் பி பாபா ஹம் சப்கா தியான் கிச்வாதே ஹே கி அந்திம் பிரத்யக்ஷதா கா சமய ஆப் பச்சோ கி ஊஞ்சி ஜீவன் சே ஹோகா. ஆப்கே சேரே சே, ஆப்கி சலன் சே, ஆப்கி தாரணாவோ சே பாபா பிரத்யக்ஷ ஹோகா. தோ ஐசே சமய கி சமீபதா திகாயி தேதி ஹே கி அபி கை பாபா கே பச்சோ மே தீவிர புருஷாரத் கி பஹுத் அச்சி லஹர் ஹே, ஜகே ஜகே பர் மேரா ஜானா ஹோதா ஹே. சபி கே தில் மே அபி ஐசே லக்தா ஹே கி பஸ் பஹுஞ்சே கி பஹுஞ்சே குச் ஹோனே வாலா ஹே. தோ அந்திம் சமய கே நஜாரே பஹுத் ஸ்பஷ்ட திகாயி தேனே லகே ஹே. ஔர் ஜப் பிரத்யக்ஷதா ஹோகி தோ ஏக் தரப் ஜெய ஜெயக்கார் ஹோகி, உஸ்கே சின்ஹ தோ அநேக் ஹே. ஜோ பாபா கஹதே தே பச்சே தும்ஹே பனி பனாயி ஸ்டேஜ் மிலேகி, லோக் புலாயேங்கே, ஆஃபர் கரேங்கே, ஹர் ஸ்தான் பர் ஆப்கோ ஹி முக்ய பனாயேங்கே, முக்ய மெஹமான் கே ரூப் மே ஆப்கா ஸ்வாகத் ஹோகா. தோ பாபா கே பஹுத் சே மஹாவாக் கே அபி ஹம் சாக்கார் ரூப் மே பிரத்யக்ஷ தேக் ரஹே ஹே. ஔர் ஐசி பிராமண ஆத்மாவோ கி பிரத்யக்ஷதா ஹோதே ஹோதே ஏக் தின் பாபா பி பிரத்யக்ஷ ஹோகா. ஔர் வோ பிரத்யக்ஷதா ஜிஸ் மே ஜெய ஜெயக்கார் கே நாரே லகே ஹம் சப்கோ அதீந்திரிய சுக் கி அனுபூதி கராயேங்கே. ஹமாரே தில் சே நிக்லேகா ஹம்னே தோ ஜோ பானா தா வோ பா லியா. லேகின் இஸ்கே சாத் சாத் பாபா கஹதே ஹே தோ த்ருஷ்ய சாம்னே ஆதே ஹே, ஏக் தரப் ஜெய ஜெயக்கார் ஹோகி ஔர் தூசரி தரப் ஹாஹாக்கார் ஹோகி. பஹுத் சி பரீட்சாயே ஜ்ஞானி ஔர் அஜ்ஞானி ஆத்மாயே நிமித் பன் கர்கே லேங்கி கி क्योंकि अंतिम समय में हर आत्मा को हिसाब किताब चुक तो करके वापस जाना है। तो जो भी हम सबने 84 जन्म में ही देह के संबंधों में रह करके अनेक प्रकार के हिसाब किताब बनाए हैं, वो भी अंतिम समय में बहुत फास्ट गति से चुकते होंगे और उसके लिए अनेक प्रकार की परीक्षाएं भी सामने आएंगी। और परीक्षाओं के साथ साथ इतना बड़ा विश्व कोई परिवर्तन कामन नहीं है। कभी आप सभी एकांत में बैठ करके इस पर विचार करना कि इतनी बड़ी दुनिया का परिवर्तन, कहाँ करोड़ों अरबों लोग हैं और सब समिट करके केवल 9-10 लाख बचेंगे, इतनी सामग्री, इतने साधन, इतनी सुविधाएं, इतना बड़ा विस्तार कलयुग का कोई कामन परिवर्तन नहीं है, बहुत बड़ा भयानक महाविनाश है। तो क्या हमारी तैयारी है उसके लिए आज इस साल के अंत में मैं आपके आगे कुछ प्रश्न रख रहा हूँ, जिससे आप अपने आप को चेक कर सकें कि सचमुच अगर वो समय समीप आ गया है तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, कि अभी बहुत समय और चलने वाला है। क्या समझते हो आप सभी, बहुत समय चलने वाला है कि बहुत निकट हम पहुंचे हैं परिवर्तन के? लगता है निकट है। अच्छा, तो जो समझते हैं कि अभी बहुत जल्दी से जल्दी इस कलयुग को जाना है और हमारी सत्ययुगी दुनिया आनी है, उसके लिए तैयार हैं हम सब, तैयारी है? है जिन्होंने समझा तैयार है वहां तो उठाओ। अच्छा, सब तैयार हैं, माताएं भी तैयार हैं, वाह, इससे खुशी की बात और क्या होगी। आज मैं आपके आगे 6-7 टॉपिक पर प्रश्न रख रहा हूं, चेक करना, रियल को रियलाइज करना, ऊपर ऊपर से नहीं, लेकिन मैं आत्मा जो हूं जैसे हूं उस रियल को रियलाइज करना कि सचमुच जैसा बाबा मुझे बनाना चाहता है क्या वैसी स्थिति मेरी बनी है, मेरा अनादि और आदि स्वरूप जिस स्वरूप में बाबा हमें पहुंचाना चाहता है, जिसके लिए हमें इतने साधन, योग भट्टियां, क्लासेज, रिफ्रेशर कोर्सेज, भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी रिफ्रेश करने की कोर्सेज होती हैं, क्लासेज होती हैं, तो क्या उनके आधार से हम सब ने रियल को रियलाइज किया है? पहले अपने फाउंडेशन को चेक करो। जब से हम सब बाबा के बने हैं, मेरा फाउंडेशन क्या है? ज्ञान और योग फाउंडेशन है या स्नेह और सेवाएं फाउंडेशन है? कई बाबा के बच्चे जिस दिन से बने हैं स्नेह में आ गए, परिवार के स्नेह में बहनों ने बहुत प्यार से टोली खिलाई, ब्रह्मा भोजन खिलाया, सहयोगी बनाया, साथी बनाया और साथ साथ सेवाओं का चांस मिला और हम सब बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाने लगे। लेकिन क्या हमारा फाउंडेशन ज्ञान और योग पर आधारित है? ज्ञान की सब्जेक्ट को हम सब ने अच्छी तरह से समझ करके ज्ञानी तू आत्मा बने हैं, ज्ञान हमारे स्वरूप में आया है, इस बात की चेकिंग जरूरी है। और ज्ञान के आधार साथ के साथ साथ योग के गहन अनुभव आत्मा ने किए हैं या सिर्फ बाबा 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 कह करके हम चल रहे हैं? अगर ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत किया हुआ है तो परीक्षाएं कैसी भी आ जाएं, स्नेह के फाउंडेशन वाले, सेवा के फाउंडेशन वाले हिल सकते हैं, लेकिन अगर ज्ञान और योग का फाउंडेशन है, पूर्ण रूप से बाबा पर निर्भर करते हैं, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, और ज्ञान से समझ से सबके साथ चल रहे हैं, तो पेपर तो परीक्षाएं तो अपने परिवार से आ रही हैं, समाज से आ रही हैं, सरकार से आ रही हैं, प्रकृति से आ रही हैं, भटकती हुई आत्माओं के द्वारा आ रही हैं, बहुत सारी परीक्षाओं के आप सभी अनुभवी हो। ऐसा कोई ब्राह्मण ये नहीं कहेगा कि मैं बाबा का बना हूँ और मेरे आगे कोई परीक्षा ही नहीं है। पढ़ाई है तो पढ़ाई के साथ साथ परीक्षा तो है ही। कोई उस परीक्षा को सहज पार कर लेते, खुशी खुशी से पेपर दे के आगे बढ़ जाते हैं, और कोई कोई उसमें उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। अगर ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत है, पक्का है, तो स्थिति डगमग नहीं होती। परीक्षाएं आती हैं, खुशी खुशी से पेपर देते और आगे बढ़ जाते। ये नहीं कहते क्यों आ गई, कहाँ से आ गई, किसने निकाला पेपर, कभी सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इस पर तो मेरा विचार ही नहीं चला। ये भी ऐसी बातें भी होंगी इस ब्राह्मण परिवार में, कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वो जब नई नई परीक्षाएं आती हैं तो कई कच्चे जो स्नेह सहयोग से चल रहे हैं वो बड़ी जल्दी मुरझा जाते, ज्ञान योग से पढ़ाई से भी किनारा कर लेते, मुरली से भी लिंक टूट जाती। कहते हम तो घर में मुरली पढ़ लेते, सेंटर पर क्या जाके करें। कई प्रकार की माया, कहते हैं जब कोई योद्धा युद्ध के मैदान में एक दूसरे पर अटैक करता है, एक देश दूसरे पर अटैक करता है, तो अटैक करने के पहले उसके सब कम्युनिकेशन के साधनों को कट करता है। टेलीफोन लाइन कट करेगा, बिजली की लाइन, पानी की लाइन, सप्लाई लाइन पहले कट करेगा, फिर अटैक करेगा। ऐसे ही माया भी जब हम सब पर अटैक करने वाली है, होती है, देखती है, तो सबसे पहले हमारे कम्युनिकेशंस को कट करती है। क्लास में आने का इंटरेस्ट नहीं होगा, मुरली सुनने का इंटरेस्ट नहीं होगा, सेवा करने का भी इंटरेस्ट नहीं होगा, परिवार अच्छा नहीं लगेगा। धीरे धीरे फिर माया देखती, अभी अलबेला बना है, अभी हम इसको अपना बना सकते हैं। इसलिए सभी अपने इस फाउंडेशन को मजबूत कर लेना कि हमारा फाउंडेशन ज्ञान और योग है, और उसके आधार से हमको परीक्षाओं में पास होना है, किसी के स्नेह के आधार से नहीं। दूसरा फाउंडेशन है निश्चय का, और निश्चय की परीक्षाएं तो समय पर समय आ रही हैं और भी आएंगी। जब कोई अचानक पेपर आता है, कहते हैं तुम देखो बाबा के बने, बड़े ज्ञानी कहलाते हो, कहते हो भगवान हमारा साथी है, कहाँ तुमको मदद किया। कोई भी छोटी मोटी परीक्षा आती है, और कलयुग के अंदर तो हम देख रहे हैं अकाले मृत्यु की परीक्षा बहुत ज़्यादा आ रही है। जिनसे थोड़ा सा अटैच होते हैं, और अधिकतर परिवार के अंदर अगर इकलौते बेटे होते हैं और माँ बाप ज्ञान में चलते हैं, सारा परिवार ज्ञान में चलता है, और अचानक वो कोई कारण बनता है, उसका शरीर छूटता है बच्चे का, कुछ भी होता है, तो बहुत बड़ा शॉक लगता है परिवार में। और जैसे ऐसे लगता है उस परिवार में दुख का पहाड़ गिर गया। फिर उसके निश्चय के फाउंडेशन को लोग बहुत हिलाते हैं, क्या भगवान ने तुमको मदद की, क्या ज्ञान योग है ये, कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो, बाबा तो कुछ नहीं तुम्हारा करता। हमारे निश्चय के फाउंडेशन को हिलाने के लिए लोग उस समय समाज वाले, परिवार वाले, संबंधी सब सामने आ जाते, सामना करना शुरू कर देते। लेकिन ऐसे कई पेपर्स में अगर हमारी स्थिति अचल रहती है, अडोल रहती है, एक रस रहती है, खुशनुमा रहते हैं, कुछ भी है, ये आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, ये नथिंग न्यू, कुछ इसमें भी राज भरे हुए हैं ड्रामा के। अगर स्थिति अच्छी है, बिल्कुल निश्चिंत हैं, तो परीक्षा पास कर देती है और बाबा की प्रत्यक्षता शुरू हो जाती है। कहते बहुत अच्छा ज्ञान, भगवान सचमुच इनको मिला है, तब इस पेपर का ये सामना कर पाए, इतना बड़ा पेपर आया लेकिन इसने इतनी सहज रीति से पार कर लिया। तो एक तरफ डिसर्विस भी होती है, एक तरफ सर्विस भी होती है। तो इसलिए निश्चय के फाउंडेशन को जरूर चेक करना, मान लो आज आप बहुत पैसे वाले धनवान हैं, पैसा है, संपत्ति है, हर प्रकार से आपका नाम वाला है कि बहुत अच्छे लोग हैं, और बाबा के बनने के बाद ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसा कोई पेपर आता है जो आर्थिक रूप में सब धन खत्म हो जाता है, एकदम कंगाल हो जाते हैं, दिवाला निकाल देते हैं, तो लोग कहते हैं देखा बाबा के बने, भगवान के बने, फिर भी भगवान ने तुम्हारी क्या मदद की, तुम तो इतना सब करते थे। इस प्रकार के पेपर हिलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे पेपर्स में अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। मेरा निश्चय का फाउंडेशन इन बातों के आधार पर तो नहीं है, क्या संपूर्ण निश्चय है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? पहला निश्चय तो ये होना चाहिए ना कि कल्प कल्प की हम विजयी आत्माएं हैं, और बाबा ने मुझे विजय की स्मृति का तिलक लगाया हुआ है। कुछ भी हो जाए, विजय तो होनी है, सफलता तो होनी है। बाबा हमारा सर्व समर्थ, सर्व शक्तिवान हमारे साथ है, और ये जो बातें आई हैं इनके पीछे कुछ कल्याण समाया हुआ है। ये परीक्षाएं और भी हमारे क्लास को आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। ये ड्रामा की हर सीन बहुत बहुत कल्याणकारी। अगर इस प्रकार से हमने ज्ञान को समझा है और निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत किया है, स्वयं में भी निश्चय है, बाबा के पार्ट में, बाबा की उपस्थिति में भी निश्चय है, और ड्रामा की हर पॉइंट में निश्चय है, ये फाउंडेशन मजबूत है, तो किसी भी परीक्षाएं आ जाए नथिंग न्यू, हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, पार हो जाएंगे। तो ये सब चेकिंग करना है, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से ज्ञान को सुन लिया, क्लासेज बहुत अच्छी लगी, लेकिन क्या सचमुच मैंने रियल को रियलाइज किया है कि मेरा फाउंडेशन किस आधार पर है? तीसरा चेक करना, बाबा कहता है अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो हम सबको ये चेकिंग करनी है कि मेरा फाउंडेशन अनुभव है। ज्ञान और योग के साथ साथ जितनी बातें हम दूसरों को सुनाते हैं, क्या मैंने उसका अनुभव किया है? कंबाइंड स्वरूप का अनुभव है, अव्यक्त वतन का अनुभव है, उस मूल स्वरूप में मूल बीज रूप स्थिति का अनुभव है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है, परमानंद स्थिति का अनुभव मैंने किया है? इसके लिए अगर मान लो बाबा के बच्चे बनने के बाद सुनी है बातें, क्लासेज में, मुरली में सुनी सब है ये बातें, लेकिन अनुभव नहीं किया है तो अथॉरिटी नहीं आएगी। इसलिए इसके लिए बाबा एक बार कहते थे मुरली में कि बच्चे जिद करो अपने आप से कि मुझे ये अनुभव करके उठना है। अब बाबा के घर में आए हो, इतनी बड़ी संख्या में भाई बहने पहुंचे हैं, एकांत तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन क्या इतनी भीड़ के बीच में एक के अंत में जा सकते हैं? अगर ऐसे एकांत में जा करके अपने आप को रियलाइज करो, रियल स्वरूप मेरा क्या है, क्या मैं सचमुच बाबा के साथ कंबाइंड हूँ? कहते हैं 2017 शुरू कर रहा तो बड़ा अच्छा एक टोटका आया, 2017, 2017, 20 कौन से? मैं आत्मा, मेरा बाबा, साथ साथ रखना इस नए साल के अंदर, ये 2017 इस कंबाइंड स्वरूप का अच्छा अनुभव करके चलना, अनुभवी बन जाओ, क्योंकि बाबा जिसके साथ कंबाइंड होगा ना, परीक्षाएं कितनी भी आ जाए, साथी जिसका सर्व शक्तिवान है, उसके लिए परीक्षाएं क्या बड़ी बात है, ऐसे हो जाएंगे पार। तो इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ। जो बाबा ने कहा है कि बच्चे ऐसा समय आएगा जब खाने के लिए पानी के बीच में होंगे, पीने के लिए नहीं होगा, खाने के लिए नहीं होगा, तो जो अनुभवी मेरे बच्चे हैं वो तो मेरे वतन में आ जाएंगे और मैं वहाँ उनको सुबी रस पिलाऊंगा अव्यक्त वतन में, तो उस समय पिलाएगा, लेकिन पहले अनुभव किया है कभी कि उसी समय अनुभव करेंगे जब पेपर आएगा तब। चेक करना कि पहले से अगर मैं बाबा के साथ जाने का अनुभवी नहीं हूँ, इस देश से डिटैच होकर के व्यक्त और व्यर्थ बातों से छुटकारा पाकर, अगर मैंने अव्यक्त अनुभव नहीं किए, अव्यक्त स्थिति के अनुभव नहीं किए, तो अंत समय में हम बाबा के पास अव्यक्त वतन में जा पाएंगे क्या? कि हाय हाय करना पड़ेगा। इसलिए पेपर के पहले तैयारी की जाती, और ये आने वाले तो सभी पेपर हैं, अचानक आ भी जाते हैं, कई जगह पर आ रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे अनुभवों की अथॉरिटी बन जाओ, इस देश से डिटैच होने के अभ्यासी बनो, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर आता है इन साधन और सुविधाओं की एकदम समाप्ति अगर हो जाए। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ आज इतने साधन हम प्रयोग में ला रहे हैं, आज सारी दुनिया डिजिटल हो रही है, कंप्यूटर युग आ रहा है, अगर एक बिजली फेल हो जाए, एक ही साधन फेल हो जाए, और होना तो है, फिर क्या होगा? कितना हाहाकार मच जाएगा दुनिया के अंदर, कैशलेस ही हो जाएंगे, सचमुच कैशलेस हो जाएंगे। ऐसे समय पर क्या होगा? तैयारी है? इसलिए अंदर से आप सब इस पर विचार करो कि अगर मान लो ऐसी परीक्षाएं सामने आती हैं, तो क्या इतना एकदम बेगट टू प्रिंस हैं, बने हैं कि कोई भी परीक्षा है हमको कुछ नहीं चाहिए, बाबा हमारा साथी है, सब साधन फेल हो जाए, ऐसी अथॉरिटी बन जाओ अनुभव की कि कुछ नहीं चाहिए, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, कहते तो हैं। तो कोई भी साधन हो यूज कर रहे हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, पास हो जाएंगे सभी। आए पेपर, आए तैयारी, देखना परीक्षाएं प्रत्यक्षता होगी, लेकिन प्रत्यक्षता के साथ साथ सब प्रकार के पेपर्स आएंगे हिलाने वाले। इसके लिए फाउंडेशन को मजबूत करो, और सबसे बड़ा फाउंडेशन है अपने पवित्र और शुद्ध विचारों का। जितनी हमारी विचार शक्ति शुद्ध है, पवित्र है, मनोबल बढ़ा हुआ है, उतना परीक्षाओं को सहज पार किया जा सकता है। अगर मन कमजोर है तो छोटी छोटी बातें छोटी दिल सिकत कर देंगे। कमजोर आत्माओं की तीन निशानियां होती हैं, एक बहुत जल्दी छोटी बातों को बड़ा बना करके फीलिंग का फ्लू आ जाता है, दिल शिकस्त माना कोई उमंग नहीं, उत्साह नहीं, एकदम खुशी गायब, निराशता, जैसे ब्लॉकेज हो जाती ना हार्ट के अंदर, आर्टरी ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ऐसे ही कई ब्राह्मण आत्माएं चलते चलते अपनी कमियों को सोच करके, अपने संस्कारों को सोच करके ब्लॉकेज कर लेती है, दिल शिकस्त हो जाती, उमंग उत्साह ही नहीं रहता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे चेक करो, क्या सचमुच मेरे पास वो मनोबल है, मैंने जमा किया है कि कोई भी परीक्षाएं आए वो पवित्रता की शक्ति से, शुद्ध संकल्पों की शक्ति से हम उसको पार कर लेंगे कुछ भी हो जाए। तो अगर ऐसी परीक्षाएं आती हैं तो पवित्रता का बल बहुत मदद करता है, पवित्र विचारों का बल है, शुद्ध संकल्पों की शक्ति है, जो असंभव कार्य भी संभव दिखाई देते हैं। बाबा वहीं हाजिर हो जाता है जहाँ बहुत सच्चे दिल वाले बच्चे रहते हैं। सच्चे दिल पर साहेब है ना राजी, अगर साहेब को राजी करना है तो अंदर बाहर की बहुत सच्चाई पवित्रता चाहिए, इच्छा मुक्त स्थिति, बिल्कुल सफाई, वो है इच्छा मुक्त स्थिति। तो जब वो स्थिति रहती है तो बाबा के साथ का, उसकी मदद का बहुत अच्छा अनुभव होने लगता है, और साथ साथ त्याग और तपस्या का फाउंडेशन कितना मजबूत है। त्याग क्या है? बाबा ने साधन सुविधाएं इतनी दे दी हैं जो त्यागी दिखाई नहीं देते, कहते त्याग कहाँ किया हम लोगों ने, लेकिन त्याग है देह अभिमान का बहुत बड़ा त्याग। जिस आत्मा ने इस देह भान को मिटाया है, कर्मेंद्रिय जीत बना है, उस आत्मा को हम त्यागी कहते हैं। इसलिए त्याग और तपस्या माना एक बाबा दूसरा न कोई, अगर ये फाउंडेशन है तो संबंधों में कितनी भी हलचल हो, संबंधों की हलचल बहुत बड़ा पेपर लेकर के आती है। उस संबंधों के हलचल में मोह जहां होता है वहां मोह की रगें इतनी खतरनाक हैं जो एकदम आत्मा को परेशान कर देती। मोह की परीक्षा अंतिम परीक्षा है। गीता में कहा है ना भगवान ने लास्ट में सारा गीता ज्ञान सुनाने के बाद कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये मोह नष्ट नहीं होता जल्दी से। वैसे कहेंगे मेरा कोई में मोह नहीं है, लेकिन जब कोई बात हो जाती परिवार में समेत संबंध में तब पता चलता है मेरा कहाँ कहाँ अभी तक मोह है, कितनी मेरी रगे लगी हुई थी। और उस समय इतनी स्थिति डगमग होती है जो बाबा भूल जाता। बाबा को भी उलहना मिलने लगता है कि बाबा आपने मुझे मदद नहीं की, ऐसी बात हो गई ऐसी बात हो गई। तो इसलिए चेक करना सचमुच त्याग और तपस्या का फाउंडेशन मजबूत है। एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, इसको कहते हैं तपस्या। और छठी बात, लक्ष्य और लक्षण में समानता ही है। लक्ष्य तो बड़ा ऊंचा है, हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य कितना ऊंचा है चेक करो। पहला लक्ष्य तो है कि हम पक्के और सच्चे ब्राह्मण बन जाएं, कोई भी शूद्रपन का संस्कार मेरे अंदर न रहे। पहला लक्ष्य तो ये है ना। बाद में दूसरा लक्ष्य है ब्राह्मणों को फरिश्ता बनना है, तीसरा लक्ष्य है ब्राह्मणों को देवता बनना है। तो हम सब तीन लक्ष्य को लेकर के इस विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना ये तीनों लक्ष्य सामने रख करके रेस करना है। एक लक्ष्य नहीं है हमारे आगे। पहला लक्ष्य है हम पक्के सच्चे शुद्ध पवित्र ब्राह्मण बन जाएं, शूद्रपन का अंश खत्म हो जाए। शूद्रपन का व्यवहार, खान पान, रहन सहन, चलन, चाल, चेहरा सब चेंज हो जाए। मुख वंशावली ब्राह्मण है कोई कम बात नहीं है, सच्चे मुख वंशावली है। तो वो ब्राह्मणपन का जाति का नशा नहीं है, ये मुख वंशावली ब्राह्मण है, बहुत ऊंचा कुल है, डायरेक्ट भगवान के द्वारा रचे हुए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्माएं हैं। और मुझे ऐसा पक्का बनना है, उसमें स्वच्छता है, रूहानियत है, बहुत आपसी प्यार है, बहुत कुछ ब्राह्मणों जीवन के अंदर पर्सनैलिटी है वो। तो पहले चेक करना कि क्या मैं बाबा का बच्चा बनने के बाद सचमुच सच्चा ब्राह्मण हूँ, या अभी तक भी कोई अंश है शूद्रपने का, बोल चाल, खान पान, रहन सहन, पहरवाइस, अगर कोई शूद्रपन की है, दिखावे वाली, बॉडी कॉन्शस वाली, वो ब्राह्मण ही नहीं है। और जब तक ब्राह्मण नहीं है तो फरिश्ता की मंजिल कैसे पाएगा। इसलिए ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। और फरिश्ता माना डबल लाइट है, इस फर्श से रिश्ता नहीं है, अर्शवासी है, उड़ता रहता है, कोई से भी लगाव झुकाव नहीं, कहीं पर भी अटका हुआ लटका हुआ नहीं है, फ्री है, फ्री बर्ड, जब चाहे जहां चाहे सेवा पर हाजिर है, सहारेदाता है, रक्षक है। ऐसे फरिश्ता नहीं है, सबके लिए सहारा है, सबके लिए रक्षक है, कोई अपना नहीं, सब अपने हैं। ऐसी स्टेज को ब्राह्मण से फरिश्ता कहा जाता है। और फिर जब तीसरा लक्ष्य सामने आता है तो बहुत ध्यान जाता है कि हमको देवता बनना है। वो देवता ही संस्कार, वो दातापन के संस्कार, वो रायल संस्कार, देने वाले, कोई से लेना नहीं, दाता माना देवता माना देने वाला, सबको देने वाला। तो चेक करना है कि हम ब्राह्मण सचमुच इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। प्रत्यक्षता ऐसी हो जाएगी कि हम ब्राह्मण देवता बनेंगे नहीं, प्रत्यक्षता के साथ साथ हमारा जीवन अगर ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, वो लक्षण सामने दिखाई देने चाहिए, चलने में, फिरने में, खाने में, बैठने में, राया संस्कार, कोई में आंख न डूबे, कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी रूप रंग वाला हो, अगर वैसी स्थिति बन गई तो कहेंगे सचमुच ये देवता बनने वाला, ये तो चलता फिरता देवता ही है, कोई को दुख नहीं देता है, सुख देता है, सुखदाता है। तो लक्ष्य के प्रमाण लक्षण कहाँ तक आए हैं ये फाउंडेशन चेक करना है। और अगर कमी है तो अभी समय थोड़ा बहुत है, ऐसा तो नहीं अभी अभी विनाश हो जाएगा। बाबा कहता बच्चे अचानक होगा, लेकिन अचानक के पहले अगर समय है तो 7 बातों का परिवर्तन होने वाला है ना। तो दुनिया के बदलने के पहले बाबा कहता स्व को बदल लो, स्व बदलोगे तो दुनिया बदलेगी। तो स्व में सबसे पहले चेक करना, क्या सचमुच मेरी दृष्टि का परिवर्तन हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा ऑपरेशन बाबा दृष्टि का करता है। दृष्टि जो क्रिमिनल है, पतित है, शूद्र पने की है, उसका ऑपरेशन करके उसको सिविलाइज्ड बना देता। बहुत पवित्र दृष्टि, आत्मा पर दृष्टि जाए, किसी के रूप रुपये पर न जाए, ऐसी दृष्टि पवित्र शुद्ध आत्मिक कहाँ तक बनी है इसको चेक करना है। और चेक करके अगर नहीं है तो प्रतिज्ञा करके इसको चेंज करना है, इसका चार्ट रखना है। नए साल में चार्ट रख करके अपने को चेक करो कि सचमुच मेरी आत्मिक दृष्टि कहाँ तक रहती है, उसमें कितनी प्योरिटी है, कितनी शुद्धता है, कितनी निर्मलता आई है। हर आत्मा की विशेषताएं दिखाई देती हैं दृष्टि से, कमी कमजोरी पर तो ध्यान नहीं जाता है। होंगी, ऐसा नहीं होंगी, लास्ट की आत्माएं आ रही हैं। बाबा कहता है कुछ न कुछ कमी कमजोरी होंगी, अभी आपको उनके लिए सहारा बनना है, उनकी कमियों को देख करके वर्णन नहीं करना, ये ऐसा करता हो, ऐसा करता हो, ऐसा कर, आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। उसको नहीं देखना, उसकी विशेषताओं को देखो और विशेषताओं को देख करके विशेषताओं का सहयोग दो ताकि वो विशेष बन जाए। दूसरा परिवर्तन चेकिंग का है वृत्ति का। वृत्तियां बहुत चंचल है, कहां कहां भटकती रहती हैं। योगी की वृत्ति बहुत शांत निर्दोष बन जाती है, अनासक्त वृत्ति बन जाती है, उपराम वृत्ति बन जाती है। हम सब बाबा के बच्चे कहां तक अपनी वृत्तियों को कंट्रोल कर पाए हैं, सब चेक करो। ये वृत्तियां अगर चंचल हैं तो उसको कंट्रोल करने की विधि क्या है, उसको कंट्रोल करने की विधि है व्रत लेना। व्रत ले लो, जैसे कहते हैं ना आज हम पानी नहीं पिएंगे, आज हम खाना नहीं खाएंगे, निर्जल व्रत भी माताएं रखती हैं, पूर्णमासी का भी व्रत रखती हैं, कोई ना कोई त्योहार आता व्रत ले लेती है। और उस व्रत में अगर कभी भी कोई खाने पीने का संकल्प आ जाए तो कहते बड़ी भूल हो गई, पाप हो गया। ऐसे ही वृत्तियों को शुद्ध बनाने के लिए, उनकी चंचलता को समाप्त करने के लिए व्रत ले लो। कुछ भी हो जाए मेरा तो एक दूसरा न कोई, मेरी वृत्ति सदा अनासक्त रहे। बाबा आपने मुझे बहुत भरपूर किया है, संतुष्ट किया है, सब प्राप्तियां कराई हैं, कोई भी आसक्तियां मेरे अंदर नहीं रह सकती। तो जब ऐसे व्रत लेते हैं तो वृत्तियां परिवर्तन होने लगती हैं। और तीसरा परिवर्तन है स्मृति का। स्मृति में जो पास्ट की बातें हैं, बहुत से लोगों को पास्ट की स्मृतियां इतनी रहती हैं। आज मेरे को एक फोन आया, एक भाई की पत्नी ने 8 महीने पहले शरीर छोड़ा। कहता है मैंने उसका हर मास भोग लगाया लेकिन वो भूलती ही नहीं है, पता नहीं बार बार मेरे सामने आ जाती है, अब मैं क्या करूं, मुझे तो योग ही लगता, परेशान कर दिया। तो मैं कहा भाई तुम ज्ञानी आत्मा, उस आत्मा को शांति से जीने दे, जहां गई है उसको जन्म लिया है, तुम अगर खींचेगा याद करेगा तो वो भी रोएगी वहां, तो रुलाने के लिए तुम्हारा जन्म है क्या। अगर तेरा स्नेह था, कोई सहयोगी आत्मा थी, तो स्नेह ये तो नहीं है उसको याद करके खींचते रहो परेशान करते। लेकिन फिर भी इतना ज्ञान होने के बाद 8-8, 10-10 मास तक, साल साल तक जिनके साथ समीप संबंध रहा है, कुछ न कुछ उनकी याद खींचती रहती। स्मृतियों में पास्ट की ऐसी स्मृतियां छप जाती हैं जो वर्तमान में इतनी प्राप्तियां होते भी वो पास्ट की वृत्तियां स्मृतियां खींच लेती हैं, प्रभाव डाल देती हैं। इसलिए जो कुछ बीत गया, कुछ भी हुआ अच्छा बुरा, फुल स्टॉप लग सकता है। ज्ञान ये कहता है सेकंड में बीती को बिंदी लगा दो, इतिहास बन गया। जो उसमें सीखने वाली बात है उसे सीख करके आगे बढ़ गए, बीती का चिंतन नहीं करना, आने वाले की चिंता नहीं करना, क्योंकि हम सब जानते हैं जो कुछ होगा सब अच्छे से अच्छा होगा। लेकिन वर्तमान जो हमें गिफ्ट मिली है, वर्तमान को हम जीना सीख जाएं, इसको अच्छे से अच्छा बनाओ। रोज अच्छे अच्छे संकल्प, उमंग उत्साह के संकल्प। कहते हैं पास्ट इतिहास है, आने वाला रहस्य है, लेकिन आज का दिन हमारे लिए गिफ्ट है जो भगवान ने दी है। तो ऐसी स्मृतियों में हम अमृत वेले से रहें कि बाबा आपने इतनी सब प्राप्तियां कराई, ये याद नहीं रहती, और पास्ट में जो कुछ हो गया वो याद रहता। इसलिए उस स्मृतियों को ब्रेक दो, कल की चिंता नहीं करो, और वर्तमान में बाबा की याद की, बाबा के द्वारा मिले हुए ज्ञान रत्नों की, वरदानों की खूब स्मृतियां अच्छी अच्छी रख करके अपनी स्मृति का परिवर्तन करो, क्योंकि स्मृति स्थिति बनाने का आधार है। अगर कोई अपनी अच्छी स्थिति, ऊंची स्थिति बनाना चाहता है तो बहुत अच्छी अच्छी स्मृतियों में रहे। पास्ट में भी कोई अच्छे अनुभव हुए हों, स्मृति में छपे हुए हों, तो उन स्मृतियों को याद करना हर्जा नहीं है, उनसे और अच्छी स्थिति बन जाती है। अगर अच्छे अनुभव पास्ट के हैं तो बुरे अनुभवों को बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप। तो स्मृति का परिवर्तन बहुत बहुत जरूरी है। और साथ साथ एक नुकसान बोल द्वारा बहुत होता है, जो कोई बोल निकल रहे हैं वो बहुत बहुत वैल्यूबल हैं संगम पर, इससे टकराव की स्थितियां पैदा हो रही हैं। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा को ये ध्यान रखना है कि मुझे वही बोलना है जो बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं बोलना है। कम बोलो, धीरे बोलो, और बाबा कहता है चुप रहो तो सबसे अच्छा है, लेकिन ऐसे चुप नहीं हो जाओ जो संबंध और बिगड़ जाए। इसलिए बोल पर ध्यान देने की जरूरत है, बोल से हम कई आत्माओं का भला कर सकते हैं, कई आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन वही बोल हों जो अनमोल हों। इसलिए बोल पर ब्राह्मणों को बहुत ध्यान देना, क्योंकि ये बोल वरदानी बन रहे हैं। आत्मा जितनी पवित्र बनती जाती है, शुद्ध बनती जाती है, उसके मुख से जो कुछ निकलता है वो सिद्ध होने लगता है। इसलिए ऐसे बोल ना निकले जो कोई को श्रापित कर दें। तो बोल का परिवर्तन चौथा परिवर्तन है। और पांचवा परिवर्तन है संपत्ति। ये विनाशी संपत्ति जिसके ऊपर हक है हम सब का, बाबा कहता ये भी अंत समय में पीछा नहीं छोड़ेगी। बहुत समय तक कई आत्माएं अभी तक जो जन्म नहीं ली भटक रही हैं। विचार करना, जहाँ खजाने दबे हुए हैं वहां पर अभी भी कोई हाथ नहीं लगा पाता, कहते वहां सांप निकल आता है, वो डराता है, कौन घूम रहा है वहां। जो आत्माएं उस संपत्ति के पीछे उस स्मृति के साथ शरीर छोड़ के गई, उनको अभी भी जन्म नहीं मिला, इतना समय हो गया, क्योंकि भय था कोई लूट न ले जाए। जब दूसरे धर्म वालों ने हमारे देश पर अटैक किया तो कई राजाओं ने, कई साहूकारों ने सोना चांदी जो उनके पास सिक्के थे वो सब मंदिरों में या स्थानों पर दबाए, आज भी वो निकाल नहीं पा रहे हैं कोई। और वो आत्माएं अचानक अगर शरीर छोड़ गई तो उनका जो संकल्प था उसी धन संपत्ति में था, इसलिए वहां ही वो आत्माएं भटकती रहती हैं, उस संपत्ति पर पहरा देती रहती, कोई इसको हाथ न लगा दे। और बाबा कहता बच्चे अंत मति सो गति, अब अंतिम समय है, वापस जाने का समय है, इसलिए संपत्ति भी अगर कोई है तो ट्रांसफर कर दो नई दुनिया के लिए, सेवा में, बाबा के कार्य में, स्थापना में मेरी संपत्ति लग जाए, कहीं न कहीं सफल हो जाए, ऐसे ही न रह जाए। इसका भी ट्रांसफर चाहिए, इसका परिवर्तन बहुत जरूरी है, नहीं तो मन वहां पर अटक जाएगा, भटक जाएगा। और संपत्ति के साथ साथ संबंधों में भी परिवर्तन चाहिए। भले कितने भी संबंधों का विस्तार है, कलयुग के अंदर तो इतने संबंधों का विस्तार है जो संबंध एक जाल बन गया है, वो संबंध वास्तव में संबंध नहीं रहे, वो बंधन बन गए। संबंधों का बंधन कितनी आत्माओं को ज्ञान और योग में आगे बढ़ने नहीं देता। उस संबंध को एक बाबा के संबंध से परिवर्तन करो कि बाबा ही मेरा सर्व संबंधी है। जो ये संबंधों से प्राप्तियां हो रही थी, वो सब संबंधों की प्राप्तियां एक बाबा से लेनी है, करनी है। समय प्रति समय बाप, टीचर, सतगुरु, ये तो मुख्य तीन संबंध हैं, लेकिन साजन है, बच्चा भी बनता है, बंधु भी बनता है। बाबा को तो गोल गोल है निराकार, उसको जो चाहिए वो बना सकते हो। सब संबंधों से आपको अपने अनुभव करा सकता है। जो प्राप्तियां आपको लौकिक जीवन में संबंधों से होती थी, वो बाबा से करके सर्व संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी बन जाना। तो ये परिवर्तन भी बहुत जरूरी है। और समय, संस्कार, पास्ट के संस्कार ही इस समय के संकल्पों का आधार है। आप सब चेक करना, ये जो संकल्प या स्वप्न आते हैं, कई बार हम बहुत अच्छे अच्छे विचारों में रहते हैं, अच्छी अच्छी सेवाएं करते हैं, कभी भी इधर उधर की चीजें देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, फिर भी ऐसे ऐसे स्वप्न आ जाते हैं। पता नहीं कभी न उसका हाथ पांव है, न कभी सोचा है, कभी देखा है, क्यों आया? कारण है हमारे कोई पास्ट के संस्कार, और उन संस्कारों के आधार से संकल्प और संकल्पों के आधार से स्वप्न। इसलिए राजयोगी आत्माएं अपने संस्कारों पर कड़ी नजर रखती हैं कि जो ऐसे संस्कार हमारे संकल्पों में उत्पन्न होते हैं, बीच बीच में वृत्तियों में, स्मृतियों में, संकल्पों में बार बार आते हैं, अटैक करते हैं, उन संस्कारों पर कड़ी नजर रखनी है ताकि वो संस्कार चेंज हो जाए। तो ये अगर परिवर्तन हमने कर लिया तो इसी जन्म में हम ब्राह्मण सच्चे पक्के बन के देवता बनने के लिए ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये परिवर्तन का समय है, परीक्षाओं का समय है। प्रत्यक्षता के पहले हम सबको अपने को स्वयं परिवर्तन करके परीक्षाओं के लिए तैयार होकर के, जय जयकार के समय में हम खुशी और आनंद में डांस कर। बाबा एक बार बड़ी अच्छी मुरली चलाई थी, बच्चे अंत समय जब आएगा तो आप बच्चे तो जिन्होंने बाबा की श्रीमत का संपूर्ण पालन किया है वो घुंघरू पहन करके डांस करोगे, याद है? लेकिन लेकिन अगर अलबेले रहे, एक दिल शिकस्त, एक अलबेलापन, एक थकावट, ये कमजोर की तीन निशानियां हैं। बहुत जल्दी थक जाता है, कुछ भी सेवा करेगा थक गया, बिस्तर पर चला गया, थोड़ी थोड़ी बात में दिल शिकस्त हो गया, या कहेगा छोड़ो ना अभी कौन बन गया, ये तो बड़ी बड़ी क्लास कराते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अलबेलापन। ये तीन निशानियां हमको कमजोर दिल वाले, कमजोर पुरुषार्थी की हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान दे करके जो अंत समय का सीन प्रत्यक्षता का है, उसमें हम बाबा के साथ बहुत खुशी और मस्ती में डांस करें, बाबा के साथ विश्व कल्याण की सकाश देने की सेवा कर सकें, उसके लिए हमको तैयार होना है। पश्चाताप की सीन हमारे सामने ना आए, कुछ भी हो, परीक्षाएं कैसे भी आए, इन स्थिति बहुत मस्त और अच्छी रहे, उसकी तैयारी का समय अभी है। तो कुछ भी हो जाए, हम सब अपनी बहुत अंदर जाकर के, एकांत में जाकर के अपने अनादि और आदि रियल स्वरूप से वर्तमान समय की भेंट करके कि मैं कहाँ तक बन पाया हूँ, मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, अपने आप को चेक करके, चेंज करके हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, प्रत्यक्षता होगी और हम सब बाबा के साथ उड़कर बाबा के साथ चलेंगे। ओम शांति। चलो 3 मिनट क्यों भाग रहे हैं, 3 मिनट में कोई हर्जा नहीं है। सब बाबा के पास चलो, बाबा से मीठी मीठी रूह रियान करके शक्ति लेके फिर जाना।